हरे कृष्ण। तो अभी आठवां स्कंद प्रारंभ हुआ है और आज सारण ठाकुर तिरुभाव दिवस है, तो मैं प्रयास करूंगा अगले 45 मिनट के अंदर तीन मुख्य विषय के ऊपर बोलने के लिए। पहला सारण ठाकुर और दूसरा, अभी क्योंकि आठवां स्कंद चालू हुआ है तो एट्थ कैंटो का मेन सब्जेक्ट और उसका ब्रीफ आउटलाइन कि कैसे ये जो पूरा कैंटो है किस प्रकार से और किस विषय के ऊपर चर्चा कर रहा है एंड फाइनल स्पीक ऑन टुडेज वर्स। उसका तात्पर्य बहुत छोटा है लेकिन उसके अंदर प्रभुपाद एक अन्य आचार्य के द्वारा टीका भी नहीं दिए श्लोक के ऊपर, लेकिन प्रभुपाद जी ने बहुत ही सिग्निफिकेंट पॉइंट्स इस परपोर्ट के अंदर बोले हैं, तो तीन विषय पर मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा। ये जो भजन हमने गाया था तिरुभाव इस भजन, उसका अर्थ इस प्रकार से, अहो जो अप्राकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे आचार्य ठाकुर श्री श्रीनिवास आचार्य कहां चले गए। मेरे श्री स्वरूप दामोदर श्री रूप साधना व्रतों का पावन करने वाले श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहां हैं। मेरे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी तथा महान नर्तक श्री चैतन्य महाप्रभु, ये सब एकाएक कहां चले गए। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इन सबका वियोग मैं कैसे सहूं। मैं अपना सिर पत्थर से पटक दूं या आग में प्रवेश कर जाऊं। गुणों के भंडार श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहां पाऊंगा। गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग न पाकर श्री नरोत्तम दास केवल विलाप कर रहे हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की ये श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर अध्याय 10, उसका शीर्षक है चैतन्य वृक्ष के स्कंद शाखाएं तथा उप शाखाएं और प्रयास संख्या 113। रामदास कवि चंद्र श्री गोपाल दास भागवताचार्य ठाकुर सारंगदास। रामदास कवि चंद्र श्री गोपाल दास भागवताचार्य ठाकुर सारंगदास। इसका अनुवाद इस प्रकार से, मूल वृक्ष की 73वीं शाखा रामदास थे, 74वीं शाखा कवि चंद्र, 75वीं शाखा श्री गोपाल दास, 73 73 74 75, 76 शाखा अर्थात 76वीं शाखा भागवत आचार्य और 77 शाखा जो ठाकुर सारंगदास थे। तो श्री सारंग ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के पार्षद से मैंने सर्च करने का पूरा प्रयास तो किया चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत के अंदर, लेकिन ऐसा जिनके महाप्रभु के साथ किसी लीला का वर्णन तो नहीं आ रहा। लेकिन ऐसा प्रयास तो मैंने किया और ना प्रभुपाद जी के तात्पर्य में भी ऐसा नहीं लिखा, ना समाधि पुस्तक में ऐसा लिखा था कि ऐसी कोई महाप्रभु के साथ प्रकट लीला का वर्णन नहीं आ रहा है इन दोनों किताबों के अंदर। हो सकता है मुरारी गुप्त के जो तो डायरी है उसके अंदर जरूर हो, और लेकिन हम सब भक्त जो मायापुर जाते हैं खासकर नवदीप मंडल परिक्रमा में, तो हम सब जाते हैं ठाकुर सारंग मुरारी के श्री पाठ उनके मंदिर पे, और वहां एक बकुल वृक्ष है और बहुत शक्तिशाली महाप्रभु के पार्षद माने जाते हैं श्री सारंग ठाकुर, और निश्चित रूप से चैतन्य वृक्ष के 77 ब्रांच हैं। कवि कर्णपुर कहते हैं गौर गणोदेश दीपिका में कि सारंग ठाकुर पूर्व जन्म में नंदीमुखी नामक गोपी थे, एक गोपी थे नंदीमुखी, और कुछ भक्त कहते हैं ऐसा अन्य कुछ भक्तों का मत है कि वे प्रहलाद महाराज के अवतार थे, लेकिन कवि कर्णपुर कह रहे हैं कि उनके पिता शिवानंद सेन को ये मत सम्मत नहीं है कि वो प्रहलाद महाराज के अवतार नहीं थे, वो नंदीमुखी गोपी थे। तो नहीं आचार्य के जो मतभेद तो हम तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो मतभेद है प्रॉपर ने लिख दिया, कोई टिप्पणी नहीं दिया है। तो गौर गुणोदेश बोनाफाइड है ही है, उसमें नंदीमुखी गोपी बताए जाते हैं। तो ठाकुर सारंगदास का ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य थे इसी श्लोक पे, ठाकुर सारंगदास का अन्य नाम सारंग ठाकुर था। सारंग वैसे भगवान के धनुष का नाम है, जो भगवान कृष्ण धनुष लेते हैं उसका नाम सारंग है, और भगवान रामचंद्र के धनुष का नाम क्या है किसी को मालूम हो तो, साउथ इंडिया जाएंगे बहुत मंदिर है कोदंड, जो भगवान का धनुष है उसको बोलते कोदंड, तो वहां पे मंदिर भी ऐसे कई सारे कोदंड राम मंदिर, वो राम जो भगवान कोदंड धनुष लेके चलते हैं। तो यानी कभी कभी उन्हें सारंग पाड़ी या पाणी या सारंगधर कहा जाता था, सारंग ठाकुर का अन्य नाम। वे नवद्वीप के निकटस्थ मोदद्रु द्वीप के निवासी थे और गंगा नदी के तट पर एकांत स्थान में भगवान की पूजा करते थे। उन्होंने किसी को शिष्य नहीं बनाया, किंतु भगवान सदैव ऐसा करने के लिए उन्हें अंदर से प्रेरित करते रहते थे कि आप दीक्षा दो, अन्य भक्तों को शिष्य बनाओ, प्रचार कार्य करो। तो तो ऐसा जब बारंबार को प्रेरणा मिलती थी बनाते नहीं थे तो फिर एक दिन निश्चय कर लिया उन्होंने, एक दिन प्रातः का निश्चय किया जो भी पहले मुझे दिखेगा उसे मैं शिष्य बना लूंगा, जो पहला व्यक्ति मुझे मिलेगा उसे शिष्य बना लूंगा मैं। तो जब गंगा स्नान करने गए तो उन्हें एक मृतक बालक बहता हुआ दिखा, नदी में ऐसा बह रहा था उसका शरीर। एक्चुअली हम पीछे इस कदम गाड़ी पर वृंदावन गए थे एक बार, 4 महीना पहले लगभग, तो वहां पे ये तब कदम में बता रहे थे, हम शमशान घाट गए थे तो हम बता रहे हमसे मतलब वहां पे तो एक बच्चे का देहांत हो गया था, तो फिर एक नदी के अंदर एक नाव के अंदर बच्चे को लेकर के और बीच नदी में छोड़ दिया ऐसा, क्योंकि बच्चे का 10-12 साल का बच्चा था। तो कदम में बता रहे थे कि ऐसे बच्चों को नॉर्मली जलाते नहीं है, उनको ऐसे नदी में अगर क्योंकि उस बच्चे की डूब के मृत्यु हुई थी नदी में डाल दिया था उसने ऐसे, तो ऐसे उनको एक बालक का शरीर प्राप्त हुआ तो जिसे उन्होंने अपने पैर से छू दिया, अपने पैर से छू दिया और छू दिया तो क्या हो गया, वो तुरंत जीवित हो उठा। कल कृष्ण जब वो गए थे जादू की, तो भगवान है भगवान के पास से तो कोई जादू कर सकते हैं, तो ऐसा जादू हो गया तो जब छुआ तो जीवित हो उठा, तो उन्होंने कहा जीवित हो गया तो उसी को अपना शिष्य बना लिया और यह शिष्य बाद में ठाकुर मुरारी के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उनका नाम सदा श्री सारंग के साथ लिया जाता है, तो उनके शिष्य का नाम क्या पड़ गया, सारंग मुरारी ठाकुर। आज भी शर नामक गांव में उनके परंपरागत शिष्य रहे हैं। कहा जाता है कि मानगाछी का मंदिर सारंग ठाकुर द्वारा शुरू किया गया। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब वहां पे बकुल वृक्ष के सामने एक नया मंदिर निर्मित हुआ और अब गौड़िया मठ के सदस्य इसका प्रबंध देखते हैं। कहा जाता है कि मंदिर की प्रबंध व्यवस्था पहले से कहीं अच्छी है। गौर गणेश दीपिका ये है इसमें एक हाँ वो वृक्ष का जो है ये वर्णन आता है कि एक बार गौरांग महाप्रभु ने देखा, तो ये चित्र भागवत लीला तो नहीं है, एक बार गौरांग महाप्रभु ने देखा कि सारंग का प्रिय बकुल वृक्ष सूखता जा रहा था और मृत प्राय हो गया था और चैतन्य महाप्रभु ने अपनी सुंदर स्वर्णिम भुजाओं से वृक्ष का आलिंगन किया और पूर्णतया जीवंत तो होकर वह वृक्ष देखते ही देखते हरित पल्लवों तथा नूतन मधुर महमहिम सुगंधों से लद गया था, फूलों से लद गया, कुल मिलाकर खुशबू वाले फूल। आज तक श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त श्रीधाम मायापुर में इस अनुकल्प वृक्ष की पूजा करते हैं। कतिपय भक्तजन नीचे गिरे छोटे छोटे काष्ठ के लकड़ी के टुकड़ों को एकत्र कर लेते हैं तथा उनसे कंठी माला बनाते हैं अथवा उनकी पूजा करते हैं। अभी मेलापुर द्वीप में सारंग ठाकुर का ये मंदिर है, ये वृक्ष भी अभी भी है, भक्तों में इसकी परिक्रमा करते हैं और वहां राधा गोपीनाथ इज द डीटी, राधा गोपीनाथ जी के बहुत सुंदर विग्रह है और पास ही में वृंदावन दास ठाकुर के घर का भी जो वो भी पास में ही है। तो आज हमें प्रार्थना कर सकते सारंग ठाकुर से कि हमें भी चैतन्य महाप्रभु शक्ति प्राप्त हो और खासकर मैराथन मंथ के अंदर बुक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा जो मृत वाय लोग हैं, जैसे कल या परसों बता रहे थे कल नहीं हम भागवत फर्स्ट कैंटो में आया था कि जीवात्मा लकड़ी के समान है ऐसा, और जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो अग्नि के समान है, लकड़ी में तो अग्नि ऑलरेडी रहती है लेकिन किसी आध्यात्मिक कृपा से जीव की जो आध्यात्मिक अग्नि है वो प्रज्वलित हो सकती है। तो ऐसे ही ये मैराथन मंथ के अंदर प्रभुपाद जी की भगवत्ता का उत्तरण करके तो सारंग मुरारी ठाकुर से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि ये मैराथन के मंथ में खासकर बद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए माध्यम बन सके। जय श्री सारंग मुरारी ठाकुर की पिता गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो ये 8वां स्कंद जो शुरू हुआ है, कल कृष्ण ने अपने इसका समरी पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर, तो जो श्रीमद् भागवत है उसके अंदर मुख्यतः 10 विषयों पर चर्चा हुई है और वो 10 विषय दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के पहले श्लोक में और दूसरे श्लोक में बताया गया है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण भूतयः मन्वंतर ईशानुकथा निरोध मुक्तिराश्रयः। तो 10 क्या है, सर्ग अर्थात ब्रह्मांड की सृष्टि, विसर्ग अर्थात उपसृष्टि और स्थानम अर्थात लोक अंतर, अलग अलग प्लैनेटरी सिस्टम्स का वर्णन, पोषणम संरक्षण, ऊतयः अर्थात सृष्टि की प्रेरणा या कामना, मनवंतर मनुओं का परिवर्तन, ईशानुकथा ईश्वर का ज्ञान, निरोधः भगवान के धाम को वापिस जाना, मुक्ति ही मुक्ति और आश्रय आधार, तो 10 विषय हैं और इसके ऊपर और भी चर्चा सुखदेव गोस्वामी लगभग 6-7 श्लोकों में बोल रहे हैं। हर एक एक श्लोक में लगभग एक एक इस भागवतम के विषय को बताया गया है। तो छठे स्कंध के अंदर मुख्यतः वृत्रासुर कथा, चित्रकेतु महा की कथा और नारद मुनि द्वारा दक्ष प्रजापति के पुत्रों का उद्धार और अजामिल की कथा, तो आप में से किसी को मालूम है कि मुख्यतः उसका शीर्षक क्या था 10 में से? पोषण, कि किस प्रकार भगवान इस पूरी सृष्टि का विशेषकर अपने भक्तों का पोषण करते हैं। और साथ में का ऊति, ऊति अर्थात कामना या संसार या सृष्टि की उत्पत्ति की इच्छा, ये यहां पे वर्णन है सृष्टि की प्रेरणा। तो जो पहले पंचम अध्याय थे उसमें हिरण्यकश्यप का वर्णन था, तो आसुरी वासना का वर्णन किया गया था। और 5 चैप्टर में प्रहलाद महाराज का वर्णन है, तो दैवी वासना का वर्णन किया गया था। और आखिरी 5 जो हमने अभी खत्म किए उनके अंदर मानवीय वासना का वर्णन था, अर्थात ये तीनों का इस प्रकार से 7वें स्कंध के अंदर डिस्क्रिप्शन है। और 8वें का मुख्य शीर्षक क्या है? मनवंतर। हमारे प्रोजेक्ट का नाम भी मनवंतर, कल हम इनको बोल रहे सब। तो और तो जो है ये इस अध्याय 8 के सॉरी स्कंध 8 के अंदर ये 14 मनवंतर का पूरा डिस्क्रिप्शन आएगा। अध्याय स्कंध 8 के अंदर और स्कंध 4 से लेकर स्कंध 7 तक मुख्यतः स्वयंभू मुनि के वंशावली का वर्णन था। और फिर ये 8वें के अंदर जो है स्कंध के अंदर बाकी सारे 14 मनुओं का संक्षिप्त में वर्णन आएगा। और विश्वनाथ ठाकुर इसका कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं और प्रभुपाद जी ने सारे चैप्टर्स की समरी के अंदर बताया है। तो मैंने एटलीस्ट सोचा कि चलो 14 मनवंतर का नाम जरूर लिख के निकालता हूं कि क्या है, इसलिए बोर्ड में लिखा क्योंकि फिर भूल सकते हैं। ये पूरे 8वें स्कंध के अंदर डिस्क्रिप्टिव है और कौन कौन से चैप्टर में कौन से मनुओं का वर्णन है, तो मैं वो थोड़ा सा एक्सप्लेन और करने का प्रयास करूंगा। तो जो पहला चैप्टर है इसका जो शीर्षक प्रभुपाद जी ने दिया है वो है ब्रह्मांड के प्रशासक मनु। और जो विश्वनाथ चतुर ठाकुर है उन्होंने इसका शीर्षक दिया है प्रेयर्स ऑफ स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु की प्रार्थनाएं। और मैंने इस चैप्टर को थोड़ा बहुत उद्धृत करने का प्रयास किया तो उसमें यही समझ में आया कि बहुत ही संक्षिप्त के अंदर पहले 4 मनुओं का वर्णन है, स्वयंभू, स्वरोचिष, उत्तम और तामस, ये 4। और मुख्यतः इसके अंदर क्या है, स्वयंभू मनु तपस्या करने जाते हैं और जब वो तपस्या करते समाधि में पूर्णतया लीन होते हैं तो कुछ ये वर्णन आगे आएगा तो कुछ राक्षस को पर्टिकुलर नाम दिया गया है वो उनको खाने के लिए दौड़ते हैं, तो उनको तो पता नहीं होता समाधि में लीन होते हैं। और भगवान एक अवतार लेके और सभी देवताओं के साथ असुर का वध कर देते हैं, स्वयंभू मनु की रक्षा करते हैं और फिर स्वयंभू मनु भगवान की प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं। बहुत सुंदर प्रार्थनाएं इसके अंदर जो भी हम पढ़ेंगे आएंगे आने वाले दिनों के अंदर। और प्रसिद्ध महाराज क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने स्वयंभू मनु के बारे वंशावली का तो मैं उनका वर्णन किया लेकिन मैं अन्य मनुओं के बारे में भी जानना चाहता हूं। और हर ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं और हर मनु की जो अवधि होती है उसको बोला जाता है मनवंतर। और 71 चतुर्युगी मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग, एक को मिला चतुर्युग या दिव्य युग जो भी बोला जाएगा। तो ये युग इंटू 71 तो ये साइकिल होता है एक मनवंतर के पीरियड का। मनु से ही जो शब्द आता है मानव और मनु संहिता, इसलिए जब हम बोलते हैं मनुस्मृति या मनु संहिता की मनुष्यों के द्वारा पालन किए जाने वाले कोड ऑफ कंडक्ट। और भगवान हर मनवंतर के अंदर एक पर्टिकुलर रूप में अवतरित होते हैं जिन्हें बोला जाता है मनवंतर अवतार। तो हर मनवंतर के जैसे भगवान के अनेक लीला अवतार हैं, गुणावतार हैं, पुरुषावतार हैं, युगावतार हैं इत्यादि, तो ऐसे ही हर मनवंतर में भी भगवान हर रूप में प्रकट होते हैं। और इसीलिए और लीलाएं करते हैं बहुत सारे लीला अवतार नहीं होते हैं, किसी किसी पर्पज के लिए आते हैं। और परीक्षित महाराज इन अवतारों के विषय में सुनना चाहते थे तो सुखदेव गोस्वामी जैसे एक मनु का थोड़ा बोलेंगे और फिर बताएंगे इस मनु के अंदर ये व्यक्ति इंद्र बने, ये सप्तऋषि थे और ये, तो इस प्रकार से बताते हैं। और फिर ऐसा बताते हैं कि इसके अंदर इस मनु के अंदर कुछ जो है ऐसे कुछ लीला हुई और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज रुक जाते हैं रुके रुके ये कथा सुनाई है आज। तो ऐसे करके भगवान के कई कई मनमंत्रों में हुई मुख्य मुख्य कथाएं बताई गई है। और तो इस प्रकार से तो पहले मनु स्वयंभू मनु, और मैं जितना कम समय के अंदर, एक्चुअली मैं कल तक भूल गया था रात तक कि मेरे को क्लास देना है, तो मैं सुबह से ही प्रिपेयर किया, तो मैं बहुत ज्यादा कंपाइल नहीं कर पाया, इसके बाद रिसर्च नहीं कर पाया, लेकिन जितना मेरे को मिल पाया तो मैं उतना इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। तो पहले मनु है स्वयंभू मनु, और इनके पुत्र थे दो, उत्तानपाद और प्रियव्रत। ऐसे दो पुत्रियों का वर्णन है, आकृति और देवभूति, मतलब थर्ड कैंटो में आकृति, प्रसूति और देवभूति तीनों का वर्णन आता है। और देवभूति के फिर शादी हुई कर्दम मुनि के साथ, और पुत्र आए कपिल देव भगवान। जय श्री जगन्नाथ बलि सुभद्रा महारानी की जय, श्री राधा राधिका रानी की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री प्रभुपाद श्री गौण दायरी जय, श्री प्रभुपाद की जय। और ऐसे स्वयंभू मनु के काल में तो बहुत सारे और भी लीलाएं हुई, लेकिन एक लीला जो आठवें स्कंद के अंदर मेंशनड है वो ये है, और आठवें स्कंद का जो आखिरी चैप्टर है वो है मत्स्य अवतार। तो मत्स्य अवतार के बारे में डिस्क्रिप्शन है कि दो बारी मत्स्य अवतार हुआ। ये पहली बार जब हुआ तो वो स्वयंभू मनु के मन्वंतर में हुआ, जब भगवान, जब ब्रह्मा जी से वेदों का ज्ञान चुरा लिया था, तो वो ज्ञान को वापिस देने के लिए भगवान मत्स्य अवतार के रूप में आते हैं। और दूसरे मनमंत्र का मनु का नाम है स्वारोचिश, और तीसरे मनु का नाम है उत्तम। ये इनके भाई है, ध्रुव महाराज के जो भाई उत्तम, जो प्रियव्रत के पुत्र है उत्तम, ये वही उत्तम है। और चौथे हैं तामस। तो ये जो तामस है इसके अंदर हुई थी लीला कौन सी, जो अगले तीन अध्याय में आने वाली है, गजेंद्र मोक्ष लीला। तो जैसे ही वो चाहता मनु का डिस्कशन देंगे, बोले इसके अंदर भगवान हरि के रूप में प्रकट हुए और गजेंद्र मोक्ष लीला हुई, और शुमान बोलेंगे आप सुनाइए वो लीला। तो तीन अध्याय उसके अंदर बीत जाएंगे, दूसरा तीसरा और चौथा अध्याय जो है वो इसके अंदर बीत जाएगा, क्या बोलते हैं, गजेंद्र मोक्ष लीला के अंदर। फिर जो है उसके बाद पांचवे मनु है, उनका नाम है रैवत, और जहां तक मेरी अंदर सुनेंगे इन्हीं की पुत्री का नाम था रेवती। तो ये जो राजा रैवत, अल्दो ऐसा मेंशन नहीं है यहां पे, बट टू माई नॉलेज यू कैन क्रॉस चेक इन द शास्त्र। और इसके बाद में जो ऐसे जो चार चैप्टर हो गए, पांच और ये चार चैप्टर हो गए गजन लीला तक, फिर अगले आठ चैप्टर के अंदर, पांच से लेके पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारह चैप्टर तक जो है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आएगा रैवत मनु का, और काफी डिस्क्राइब में चाक्षुष मनमंत्र का, छठा जो है ये चाक्षुष मनमंत्र का डिस्क्रिप्शन होगा। इसमें कौन सी लीला हुई, इसमें हुई समुद्र मंथन लीला। एक तो मत्स्य अवतार तो हुए हुए, वो तो अंत में छोटा सा वर्णन आएगा। सत्यव्रत राजा की जो कथा हुई थी उसके कारण जो मत्स्य अवतार हुआ वो हुआ चाक्षुष मनु में, चाक्षुष मनमंत्र में, जब प्रलय के समय भगवान मत्स्य के रूप में आते हैं, बड़े बड़े होते हैं, तो वो लीला चाक्षुष मनमंत्र में हुई थी। लेकिन जो डिस्क्राइब में लीला है बहुत एक बड़ी, वो है कौन सी, समुद्र मंथन लीला। तो वो होगी छठे मनमंत्र के अंदर हुई थी, मतलब पिछले मनमंत्र के अंदर, चाक्षुष मनमंत्र के अंदर भगवान ने ये लीला की, समुद्र मंथन लीला। तो ये आठ चैप्टर के अंदर इसका डिस्क्रिप्शन है। और फिर ये मनु कहां चल रहा है, वैवस्वत। इनका नाम है वैसे श्राद्ध देव, लेकिन विवस्वान के पुत्र होने के कारण इनको बोला जाता है वैवस्वत मनु भी बोला जाता है। ऐसा उनका नाम है श्राद्ध देव, और ये अभी चल रहा है जिसके अंदर ब्रह्मा जी के 50 वर्ष हो चुके हैं, और ये मनु चल रहा है अभी, जो मनु भी चल रहा है ब्रह्मा जी के इस दिन के अंदर, वो है वैवस्वत मनु। और इसके अंदर भगवान ने गीता बोली थी विवस्वान को, विवस्वते योगम प्रोक्तवान अव्ययम विवस्वान मनुवे प्राह मनु इक्ष्वाकु अब्रवीत। तो वहां पे वो जो राजर्षि परंपरा थी गीता की, विवस्वान से चालू हुई सूर्य वंश से। और तो इसके अंदर कौन सी लीला हुई, अब एक बार अवतार की लीला आठवें स्कंद के अंदर है, कौन सा एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, वामन देव नहीं, मोहिनी मूर्ति तो हो गए समुद्र मंथन लीला में आ गए ना, सारा वो तो समुद्र मंथन लीला का ही पार्ट है। अब वामनदेव जो वामनदेव की जो कथा है वो इस वैवस्वत मनु में हुई है, मनमंत्र में, सॉरी। तो इसका बहुत डिटेल से डिस्कशन आएगा वामन देव का। वैसे महाप्रभु जहां भी अवतार आते हैं जिनके पास सुना है तो प्रश्न पूछता है उनकी लीला सुनाइए और लीला शुरू हो जाती है तो मनु में करके ज्ञान आ जाता है। तो ये जो है 13वें अध्याय के अंदर वैवस्वत मनु का डिस्क्रिप्शन है और 14वें में उनकी कथा, तो 2 अध्याय के अंदर। फिर 15 से लेकर 23 तक 9 अध्याय के अंदर वामन देव तो चाक्षुष मनमंत्र का डिस्क्रिप्शन है और उसी के अंदर 23वें अध्याय के एंड में आ जाएगा। तो उसके अंदर 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां ये सारे के सारे मनमंत्र का डिस्क्रिप्शन 23वें अध्याय के अंदर आ जाएगा और 24वें में फाइनली मत्स्य अवतार और 8वां स्कंध समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा और फिर 9वां स्कंध प्रारंभ होगा। तो ये इसका आउटलाइन है इस प्रकार से कुछ, मुख्यतः गजेंद्र मोक्ष लीला और उसके बाद समुद्र मंथन, उसके बाद वामन देव और मत्स्य अवतार। तो ये 4 लीला इसके अंदर होगी और 14 मनुओं का ये साइकिल पूरा होगा, क्योंकि यही महाराज परीक्षित का क्वेश्चन था जो आज के श्लोक में आया है। तो कल जो श्लोक था पहला और दूसरा, उसमें यह था कि राधा परीक्षित ने बोला, हे स्वामी, हे गुरु महाराज, अभी मैंने आपके मुख से स्वयंभू मनु के वंश के विषय में भली बातें सुना, किंतु अन्य मनु भी तो हैं, अतः मैं उनके वंशों के विषय में सुनना चाहता हूं, कृपा करके उनका वर्णन करें। और हे विद्वान ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी, बड़े बड़े विद्वान पुरुष जो महान बुद्धिमान हैं, विभिन्न मनमंत्रों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलापों का तथा उनके प्राकट्य का वर्णन करते हैं, हम इन वर्णों को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं, कृपया उनका वर्णन करें। तो 2 कारण बताए जाते हैं कि महाराज परीक्षित क्यों उत्साहित थे ये सुनने के लिए। तो एक कारण तो यहां क्लियर एविडेंट ही है कि भगवान अलग अलग मनमंत्र में अलग लीलाएं करते हैं और जो विद्वान जन हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वो इन लीलाओं को सुनना चाहते हैं। और दूसरा एक रीजन बताया जाता है, महाराज परीक्षित खुद भी क्षत्रिय थे, राजा राजऋषि थे, तो अन्य सब राजऋषियों के बारे में सुनना चाहते थे, वो भी प्रशासक थे पृथ्वी के, तो जानना चाहते हैं जो ओरिजिनल प्रशासक हैं, जो मनु हैं, वो कैसे प्रशासन करते थे। तो इसलिए भी उनकी रुचि है इसके अंदर जानने में, अन्य राजऋषियों के बारे में। तो इस प्रकार से ये है, मैं इसका पहले अध्याय का चैप्टर समरी पढ़ता हूं और फिर मैं आज का श्लोक पढ़ना प्रारंभ करूंगा। तो अध्याय 1, ब्रह्मांड के प्रशासक मनु। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के चरण कमलों में विनम्र सादर नमस्कार करता हूं। 1935 में जब वे राधा कुंड में रुके हुए थे तो मैं मुंबई से उनका दर्शन करने गया था। उस समय उन्होंने मंदिर बनवाने तथा पुस्तकें प्रकाशित करने के संबंध में मुझे अनेक महत्वपूर्ण आदेश दिए थे। उन्होंने स्वयं मुझसे कहा था कि पुस्तकें प्रकाशित करना मंदिरों के बनवाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। निसंदेह वे आदेश मेरे मन में अनेक वर्षों तक बने रहे। मैंने 1944 में अपनी पत्रिका बैक टू बैक का प्रकाशन आरंभ किया और 1958 में जब मैं अपने पारिवारिक जीवन से विरक्त हो गया तो दिल्ली में श्रीमद् भागवत का प्रकाशन आरंभ किया। जब भारत में श्रीमद् भागवत के 3 खंड छप चुके थे तो मैं 13 अगस्त 1965 को संयुक्त राज्य अमरीका के लिए रवाना हो गया। अपने गुरु के सुझाव के अनुसार मैं पुस्तकों के प्रकाशन का निरंतर प्रयत्न कर रहा हूं। अब इस वर्ष 1976 में मैंने श्रीमद् भागवत का 7वां स्कंद पूरा कर लिया है और 10वें स्कंद का सारांश लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के नाम से पहले ही प्रकाशित हो चुका है। अभी भी 8वें, 9वें, 10वें, 11वें तथा 12वें स्कंदों का प्रकाशन शेष है। अतएव इस अवसर पर मैं अपने गुरु से प्रार्थना कर रहा हूं कि वे इस कार्य को पूरा करने के लिए मुझे शक्ति प्रदान करें। मैं न तो कोई महान विद्वान हूं, न ही महान भक्त, मैं तो अपने गुरु का केवल एक गुणी दास हूं और अमेरिका के अपने शिष्यों के सहयोग से इन पुस्तकों को प्रकाशित करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहा हूं। सौभाग्य से विश्व भर के विद्वान इन ग्रंथों की प्रशंसा कर रहे हैं। आओ हम मिलजुल कर कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत संत ठाकुर को प्रसन्न करने के लिए श्रीमद भागवत के अधिकाधिक खंडों का प्रकाशन करें। तो बाबा ने वाई इज राइटिंग, वॉट इज इज मोटिवेशन टू प्लीज भक्ति सांसद ठाकुर प्रसन्न करने के लिए वे ग्रंथ लिख रहे हैं और इसलिए 8वां स्कंद भी लिख रहे हैं। तो अब चैप्टर स्कंध प्रारंभ है। 8वें स्कंध के इस पहले अध्याय में चारों मनुओं स्वयंभू स्वरोचिष उत्तम तथा तामस का संक्षिप्त वर्णन हुआ है। 7वें स्कंध के अंत तक स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन सुनकर महाराज परीक्षित ने अन्य मनुओं के विषय में जानने की जिज्ञासा प्रकट की। वे यह भी जानना चाह रहे थे कि भगवान केवल किस प्रकार न केवल भूतकाल में अपितु वर्तमान काल तथा भविष्य काल में भी अवतरित होते रहते हैं। और किस तरह वे विभिन्न लीलाओं में मनु की भूमिका निभाते हैं। चूंकि परीक्षित महाराज यह सब जानने को उत्सुक थे, अतएव सुखदेव गोस्वामी ने भूतकाल में प्रकट हुए छह मनुओं से आरंभ करके क्रमशः सभी मनुओं का वर्णन किया। प्रथम मनु स्वयंभू मनु थे, उनके दो पुत्रियां थी आकुर तथा देवहूति, जिनसे क्रमशः यज्ञ तथा कपिल नामक दो पुत्र हुए। चूंकि सुखदेव गोस्वामी तृतीय स्तंभ में कपिल के कार्यकलापों का वर्णन कर चुके थे, अतएव उन्होंने अब यज्ञ के कार्यकलापों का वर्णन किया। आदि मनु अपनी पत्नी शतरूपा सहित सुनंदा नामक नदी के तट पर तपस्या करने के लिए जंगल चले गए। उन्होंने वहां 100 वर्ष तपस्या की। तभी मनु ने समाधि में भगवान की स्तुतियां तैयार की। तब राक्षसों तथा असुरों ने उन्हें निगल जाने का प्रयास किया, किंतु यज्ञ ने अपने पुत्रों यामों तथा देवताओं की सहायता से उन्हें मार डाला। तब यज्ञ ने स्वर्ग लोगों के राजा इंद्र का पद स्वयं ग्रहण कर लिया। तो मनु के बेटे थे यज्ञ। और दूसरे मनु का नाम स्वरोचिष था और वे अग्नि के पुत्र थे। उनके पुत्रों में द्युमत, सुषेण और रोचिष्मत मुख्य थे। इस मनु के युग में रोचन स्वर्ग लोगों का राजा इंद्र बना और तुषित इत्यादि अनेक देवता हुए। अनेक साधु पुरुष भी हुए यथा ऊर्ध तथा स्तंभ। उन्हीं में वेदशिला था, जिसकी पत्नी तुषिता ने विभु को जन्म दिया। विभु ने 88,000 देवगतों अर्थात साधु पुरुषों को आत्मसंयम तपस्या का उपदेश दिया। तृतीय मनु प्रियव्रत का पुत्र उत्तम था। उनके पुत्रों में पवन, सृंजय तथा यज्ञ होत्र इत्यादि थे। इस मनु के राज्यकाल में वशिष्ठ के पुत्रों में प्रमद इत्यादि सप्तऋषि हुए। सत्य, देवश्रुत तथा भद्रगण देवता बने और सत्यजित इंद्र बने। धर्म की पत्नी सुमृता के गर्भ से सत्यसेन के रूप में भगवान उत्पन्न हुए, जिन्होंने सत्यजित से युद्ध करने वाले यक्ष तथा राक्षसों का वध किया। तो हर मनवंतर अवतार का नाम भी दिया गया। जैसे स्वयंभू मनु में जो मनवंतर अवतार थे उनका नाम था विभु, और फिर ये जो नहीं सॉरी स्वरोचिष मनवंतर में, और जो चाक्षुष नहीं उत्तम मनु के अंदर सत्यसेन। तृतीय मनु का भाई तामस चतुर्थ मनु बना, यानी उत्तम का भाई तामस। इसके 10 पुत्र हुए, जिनमें पृथु, ख्याति, नर तथा केतु प्रमुख थे। उनके राज्यकाल में सत्यक गण, हरिगण, वीरगण तथा अन्य देवता हुए। सप्तऋषियों में ज्योतिर्धाम मुख्य था और त्रिशिक इंद्र बने। हरिमेधा के ही अपनी पत्नी हरिणी के गर्भ से हरि नामक पुत्र उत्पन्न हुए। भगवान के इन्हीं अवतार हरि ने अपने भक्त गजेंद्र को बचाया। यह घटना गजेंद्र मोक्षण के नाम से वर्णित है। इस अध्याय के अंत में परीक्षित महाराज इसी घटना के विषय में विशेष जिज्ञासा करते हैं। तो ऐसे गजेंद्र मोक्ष की लीला जो है चालू होगी। तो आज का श्लोक इस प्रकार से हमारे पीछे दोहरा सकते हैं। यद्यस्मिन् अंतरे ब्रह्मन् भगवान विश्व भावना कांकुलित करता ही अतीत अनागत अद्यवा। यह शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य जीवन में से इसी वक्त नाम शुक्रपात के दर्शक प्रभु कहा देखी यद जो भी कार्यकलाप यस्मिन किसी विशेष युग में अंतरे मन अंतर में ब्रह्मण हे ब्राह्मण भगवान भगवान विश्वभावन इस विश्व जगत को उत्पन्न करने वाले कृतवान किया गया कुरुते कर रहा है करता तथा करेगा ही निसंदेह अतीते भूतकाल में अनागते भविष्य में अद्य वर्तमान में वा अथवा। तो इसका अनुवाद आपको इस प्रकार से, इसमें दो शब्द बहुत अच्छे यूज हुए हैं, वो है भगवान और विश्व भावना। विश्व भावना अर्थात इस दृश्य जगत को उत्पन्न करने वाले हैं। ऐसी भगवान का एक नाम हमने कल प्रकाश कांड पढ़ा लोक भावना है ना, कि सभी लोगों का पालन पोषण करने वाले। तो भगवान का एक नाम विश्व भावन भावना है। तो ऐसे भगवान और भगवान भगवान है, तो इस दृश्य जगत को उत्पन्न करने वाले भगवान के उन सारे कार्यकलापों का वर्णन हमसे करें जिससे उन्होंने विगत मनमंत्रों में संपन्न किया, जो वे वर्तमान में संपन्न कर रहे हैं तथा जो वे भावी मनमंत्रों में संपन्न करेंगे। अतीते अनागते अद्य, अतीते मतलब भूतकाल में, आगते मतलब आने वाला वो, तो अनागते भविष्य में, और अद्य मतलब वर्तमान में जो अभी प्रेजेंट उसके अंदर कर रहे हैं लीलाएं वो बताइए। तात्पर्य भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि युद्ध भूमि में उपस्थित स्वयं वे तथा अन्य सारे जीव भूतकाल में विद्यमान थे, वे इस समय उपस्थित हैं और भविष्य में भी स्थित रहेंगे। कौन सा श्लोक है? नाद्यवाहम न जातु नासम न त्वम निमजनादिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। भूत वर्तमान तथा भविष्य भगवान तथा सामान्य जीवों में सदैव रहते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम भगवान तथा जीव दोनों ही शाश्वत तथा सचेतन है, किंतु इनमें अंतर यह है कि भगवान असीम है जबकि जीव सीमित है। भगवान प्रत्येक वस्तु का सृष्टा है और यद्यपि जीव उत्पन्न नहीं किए जाते अपितु तो भगवान के साथ नित्य रहते आए हैं, किंतु उनके शरीर उत्पन्न होते हैं जबकि भगवान का शरीर उत्पन्न नहीं होता। भगवान तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन बद्ध जीव शाश्वत होते हुए भी अपने शरीर से भिन्न होता है। तो यहां पे श्री प्रभुपाद जो इस तात्पर्य में बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि भगवान और जीव में क्या समानता है और क्या भेद है। तो दो समानताएं प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो क्या है कि जीव और भगवान में दो समानताएं हैं जो यहां बताएंगे। और भी कुछ हो सकती है, क्या है वो? एक तो दोनों शाश्वत है, दे आर बोथ इटर्नल। अच्छा, प्रश्न कभी बहुत बार पूछा जाता है कि किस समय भगवान ने सब जीवों की रचना की, तो प्रवक्ता दे रहे हैं नहीं, भगवान ने कोई रचना नहीं की, किसी समय के प्रभाव में वो शाश्वत रूप से भगवान के साथ ही रहते हैं। तो जीवात्मा और परमात्मा, भगवान और सभी जीव इटर्नल है, शाश्वत है बेसिकली। तो देखो प्रभाव इस समय नेवर क्रिएटेड इन दैट सेंस। प्रभाव स्पीक इन इंग्लिश कि द लिविंग एंटिटीज आर नॉट क्रिएटेड बट एग्जिस्ट विद द लॉर्ड इटर्नली। कभी मैं पूछा कब समय था, कौन सा साल था, कितना एडी कितना बीसी बता दीजिए हुआ, तो ऐसा नहीं है ना कि जीवात्मा को भगवान ने याद रखना कि वो शाश्वत रूप से भगवान के साथ रहे। जैसे भगवान शाश्वत है, सभी जीव भी शाश्वत हैं। और दूसरा समानता क्या है? दोनों सचेतन है, सचेतन है या सेंटियंट बींग्स। जो प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज के लिए प्रार्थना लिखी थी 1935 में, एब्सोल्यूटली सेंटियंट, दाउ हैज प्रूव्ड इनपर्सनल कैलामिटी, दाउ हैज रिमूव्ड, तो एब्सोल्यूटली सेंटियंट अर्थात सचेतन व्यक्ति है वो, उनके अंदर भी सब भाव भंगिमा है। जैसा कि आई थिंक बाइबल में बोला जाता है दैट गॉड है, मैन इज क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड, इन द इमेज ऑफ गॉड, कि मतलब मनुष्य जो है एक प्रकार से भगवान की ही छाया है, कि प्रतिबिंब तो नहीं, छाया है एक भगवान के इमेज के। तो भगवान भी उसी प्रकार से है, जैसे हमारी भावनाएं हैं ऐसे भगवान के अंदर भी भावनाएं हैं। वास्तुतः भगवान सभी भावनाओं के, सभी प्रकार के रसों के, सभी प्रकार के आदान प्रदान के स्रोत हैं। तो हमारे अंदर में जो भी चीज है ना, वो सब भगवान से ही आ रही है, जन्मादस्य यतः। और तो ये दूसरा सिमिलैरिटी है, लिविंग एंड द सेंटिएंट सचेतन है और भगवान भी सचेतन है। ऐसा नहीं कि भगवान निर्विशेष है या निराकार है या कोई ज्योति है, ऐसा नहीं है। भगवान दोनों शाश्वत है, दोनों ही सचेतन है। और डिफरेंस क्या है? तीन डिफरेंस यहां प्रभुपाद जी डिस्क्राइब कर रहे हैं यहां पे। तो पहला अंतर है कि भगवान भी शाश्वत है, सीमित है। तो कोई पूछेगा ठीक है हम भी भगवान हो गए फिर तो, इसलिए प्रभुपाद जी बड़े टैक्टफुली जो है इंडिया पुट करें, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? जीव क्या है? सीमित है। और भगवान क्या है? असीमित है। अर्थात हम कभी कभी कॉलेज में लोगों से पूछते हैं दैट लिविंग एंटिटीज आर इनफाइनाइट सिमल एंड द लॉर्ड इज इनफाइनाइट। अच्छा हिंदी में क्या मतलब है? बोले जीव अणु है, तो भगवान का मतलब लोग बोलते परमाणु है, परमाणु नहीं है जीव, भगवान विभु है, विभु। सब तो भगवान परमाणु के बोलते इन साइड एवरी आइटम अंडांतर अस्तम परमाणु चयांतर अस्तम, तो ऐसे बोला तो वो अलग गलत नहीं है, लेकिन भगवान विभु है। इनफाइनाइट का जो हिंदी पर्यायवादी शब्द है या मीनिंग है उसका होता है विभु। तो भगवान असीमित है और जीव सीमित है। तो जैसे सागर की बूंद होती है, तो भगवान एक सागर के समान है, जीव एक सागर की बूंद के समान है। अब इस एग्जाम्पल को आगे एक्स्ट्रापोलेट मत कीजिएगा, जब बूंद सागर में मिल जाती है तो सागर बन जाती है, वो सिद्धांत गलत है, खाली यही तक इसी कंटेक्स्ट में रहना चाहिए। और दूसरा जो डिफरेंस बता रहे हैं प्रभुपाद जी, वो बता रहे हैं कि भगवान सबके सृष्टि करता है, भगवान कभी भगवान की सृष्टि नहीं होती। कई बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं, इफ गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग हु क्रिएटेड गॉड, समबडी मस्ट हैव क्रिएटेड गॉड, किसी ने किसी ने तो भगवान को बनाया, भगवान ने सब चीजों को बनाया तो किसने भगवान को बनाया है ना। तो ऐसा नहीं है, जिसने भगवान को किसने भी बनाया, अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण, भगवान का कोई हेतु नहीं है, भगवान को बनाने वाला कोई नहीं है, यदि जिसने भगवान को बनाया था उसको भगवान कहते हैं। तो भगवान वो है जिनसे सब चीजों की सृष्टि होती है, लेकिन भगवान की सृष्टि किसी से नहीं होती। तो ये भगवान की परिभाषा भी है और ये भगवान का लक्षण भी है, तो ये अंतर है। तो प्रभुपाद कहते हैं लेकिन जीवों की भी सृष्टि नहीं होती, जीव भी अनादिकाल से भगवान के साथ है, हालांकि भगवान से भगवान के साथ ही रह रहे हैं, भगवान से ही वो निकले, नित्य नित्य नाम चेतन चेतना ना एक बहुनाम विधाधिकार। तो भगवान ने स्वांशों विभिन्नांशों के रूप में अवतार विस्तार किया बेसिकली, लेकिन कह रहे हैं जीवों के शरीर की रचना होती है कि नहीं। जैसे हम सब हैं तो गर्भ से लेकर मृत्यु तक, फ्रॉम वूम टू टूम, हमारा शरीर जो है बदलता भी रहेगा, हमारा एक भौतिक शरीर की रचना होती है। और जो मैटर के छह रूल्स हैं, बर्थ है, ग्रोथ और क्या है आगे, मेंटेनेंस, फिर बाय प्रोडक्शन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स, ड्विंडलिंग एंड डीके, हिंदी में तो मुझे इसके नाम नहीं मालूम, ऐसे बोला जाएगा। तो वो सब शरीर परिवर्तन होते हैं उसके अंदर, तो हमारे शरीर की रचना होती है और फिर वो पंच महाभूत से और मिल जाता है, लेकिन भगवान की सृष्टि नहीं होती। जीवों की सृष्टि होती है, जीवों के शरीर की सृष्टि होती है। तो ये दूसरा अंतर है। और तीसरा अंतर क्या है कि भगवान और भगवान के शरीर में कोई अंतर नहीं है ना, लेकिन जीवात्मा और उनके शरीर में अंतर है। जैसे हम सब जीवात्मा है तो हमारे पास एक स्थूल शरीर है और एक सूक्ष्म शरीर है, लेकिन भगवान के पास भगवान की आत्मा है, भगवान का स्थूल शरीर, भगवान का सूक्ष्म शरीर, ऐसा वर्णन नहीं है। भगवान सब कुछ एक ही है। और उदाहरण दिया जाता है, जैसे एक फल होता है तो उसके ऊपर छिलका रहता है कि नहीं, तो छिलका अलग है, छिलके के अंदर फल का रस है, रस अलग है। तो ये हमारी है, मतलब हम सब जैसे आत्मा है तो हमारे ऊपर एक छिलका है ये सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर का। लेकिन भगवान कैसे पूर्ण रस के, जो अखिल रसामृत मूर्ति केवल रस से भरे, तो उनके शरीर और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो जो है ये तीन तो उत्तर कोई भी हमसे प्रचार कर रहा है, हमें अपने जीवन में भी जान सकते हैं बड़ी आसानी से, और वो समझने के लिए बड़ा साधारण से समझ सकते हैं कि हम वृंदावन जाते हैं या दिल्ली में, तो खैर इतने अब नहीं दिखाई पड़ते, सुअर दिखाई पड़ते हैं दिल्ली में ज्यादा, तो नहीं दिखाई पड़ते अभी, सब लोगों ने मार के खा गए होंगे या तो नालियां कवर करके सुअर कहां रहेंगे, लेकिन वृंदावन में जाते हैं बहुत सुअर दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे भगवान का एक अवतार हुआ था वराह रूप, शुक्र रूप के अंदर। तो एक भौतिक इस जगत का सुअर है और एक भगवान सुअर के रूप में अवतार ले रहे हैं, तो दोनों में कुछ अंतर है कि नहीं है, क्या अंतर है बता सकते हैं? कुछ अंतर है दोनों के बीच बता सकते हैं कि एक साधारण सुअर और भगवान जो सुअर के रूप में है उनमें क्या अंतर है? जो भगवान जो थे उनका जो वराह देव थे, शुक्र रूप थे, उनका जो साइज था बहुत ही विशाल था और नॉर्मल सुअर छोटा सा होता है, कैसे उन्होंने उनके जो कार्यकलाप दिव्य थे पूरा पृथ्वी को उठा करके लेकर के आ गए, लेकिन और आधे सुअर तो थोड़ी वो तो खाली नाली में जाकर मन उठा के ऊपर लेके आ सकता है, और किसने उठा के लेके आ सकता। और देखो समानता क्या है, समानता क्या है, शुक्र रूप है, और देखो सुअर किधर ऐसे नीचे की तरफ जाता है हमेशा, मतलब गंदी जगह में जाता है, ऐसे भगवान के रसातल में गए, देखो नीदर प्लैनेट्स की ओर गए, कंपेरिजन नॉट सिमिलर, जैसे नाली में गया ऐसा नहीं, लेकिन सिग्निफिकेंटली उस प्रकार से है। और क्या अंतर है? हाँ, ये तो जो भगवान जब सुकर के रूप में आए तो ही स्प्रेड ऑल ऑस्पिशियसनेस, उनके अंदर सब जगह, उस समय तो पूरा अशुभ भाव था पृथ्वी का, आगे ब्रह्मा जी को इतना चिंता था, अरे ये पृथ्वी रचना क्या, यहां वो करना था सब कुछ, सब सिस्टम सेट किया और देखा पृथ्वी गायब हो गई, कितना उनको एंग्जाइटी का समय था वो ब्रह्मा जी के लिए, और तब उनके नाक से वराह देव निकले और फिर पृथ्वी के ऊपर लेके आए, तो जब आए तो पूरा अशुभ जो वहां पे वातावरण था उसको दूर कर शुभ फैलाया है, शुद्धता फैलाई कि भगवान के शरीर से निकलने वाले छींटों से जो है सब ऋषि पवित्र हो गए, और अभी वो सुबह आए ऐसा थोड़ा छिड़कर मान लीजिए सब भाग जाएंगे दूर दूर तक, के दूर केवल कंटामिनेशन फैला गया। तो भगवान औषधि से स्प्रेड करते हैं, सुअर कंटामिनेशन स्प्रेड करता है। और यश चौधरी ओके और तो फिर कंपैरिजन कंपैरिजन दैट इज अ फैक्ट वी हैव टू मेक सम कंपैरिजन। और क्या डिफरेंस है चौधरी, भगवान का ऑर्डरली सुअर इतना गंदा दिखाई पड़ता है, भद्दा दिखाई पड़ता है, और वो सुअर सूकर के रूप में भगवान है तो इतने सुंदर दिखाई पड़ते थे ऐसे, है ना, उनका रूप ऐसा नहीं था भद्दे सुअर के समान, तो बहुत ही ब्यूटीफुल था। और ऐसे अवतार को देख के ऋषि उन्होंने क्या किया, उनकी पूजा अर्चना की जाती है, और ऐसे सुअर को तो भगा दिया जाता है, है कि नहीं। तो एक साधारण सुअर और भगवान जब शुक्र का रूप लेते हैं दोनों में अंतर है। कैसे रूप की जाती है, वसति दर्शन शिखरे धरणी तब लग्न शशिनी कलंक कलेव निमग्न केशर भ्रीता शुकर रूप जय जगदीश हरे, कि भगवान जो शुक्र दाढ़ है उसमें जो पृथ्वी लगी है तो ऐसे लग रहा है चंद्रमा शशिनी कलंक कलेव निमग्न, जो चंद्रमा के ऊपर जिस प्रकार से एक दाग रहता है ऐसे भगवान के दाढ़ के ऊपर पृथ्वी है, तो ऐसे भगवान की पूजा की जाती है, है कि नहीं। तो साधारण सुअर और जो भगवान जो शुक्र रूप में आते दोनों में बिल्कुल लोहा सोने का अंतर है कि नहीं। ये प्रकृति के बुरे कर्म करने का कारण है, और ये प्रकृति का उद्धार करने के लिए भगवान शुक्र आए हैं। ऐसे शुक्र की पूजा करेंगे तो हम जन्म के चक्र छूट जाएंगे, है कि नहीं। और ऐसे सुअर के पास में जाएगा तो वो तो जो है एक साधारण जीव और भगवान में हमेशा अंतर है। लेकिन जब भगवान नर लीला करते हैं या अन्य लीलाएं करते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे लोग बिगिंडर हो जाते हैं। कैसे बिगिंडर होते हैं, बोले साधारण मनुष्य तो है। और तभी भगवान गीता में क्या बोलते हैं, अवजानंति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भावम अजानंदम मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो एक तो है ये श्लोक जो बात है अवजानंती, एक तो न जानंती, जानते नहीं है कोई लोग, इग्नोरेंट है, तो एक बात है। एक अवजानंती तो जानते हुए मेरा उपहास करते हैं कि अच्छा हाँ मायावी है, छलिया है, वे महापुरुष है, कुछ शक्तिशाली व्यक्ति था, ऐसा नहीं, परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो ऐसे लोग उपहास करते हैं। दुनिया में बहुत सारे मूर्ख लोग हैं, जैसे कल इसके कृष्ण जी आपको भी बता रहे थे, बहुत सारे मूर्ख लोग हैं जो भगवान को जब मनुष्य बना देते हैं और मनुष्य को भगवान बना देते हैं। ये दोनों ही बहुत बड़ा अपराध है, दोनों ही लोगों को ठगने के समान है। तो ऐसे भगवान जब माता यशोदा को बांधती है तो लगता है कि ये तो साधारण बच्चा है, जब भीष्मदेव के बाण से उनके शरीर से खून निकलता है तो लोग बिगड़ जाते हैं। द्रौपदी जी बता रहे हैं वहां पे कि ये जो भगवान के शरीर से पसीना खून धूल निकला है, और खासकर जो बाण से घाव हो रहे हैं, That is the bewildering for all the atheist, but it is the highest pleasure for all the devotees. You know, they get the highest rasa in this. कि किस प्रकार से भगवान के दिव्य शरीर में, you know, अब कहां उसके दिव्य शरीर में खून थोड़ी है भगवान के दिव्य शरीर, लेकिन भगवान जब बाण मारते हैं भीष्म पितामह के तो सब खून निकलता है, और भीष्मदेव को बहुत खुश होता है देख के। पूरे सृष्टि में एक ही व्यक्ति खुश होता है, भीष्मदेव, भगवान के इतना खून निकल रहा है, उनको लग रहा है हमें ऑफर भगवान स्वीकार कर रहे हैं, और भगवान को भी बहुत अच्छा लगता है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक और चीज बताते हैं कि सब तो सोच रहे थे, साधारण दृष्टि से दिखता है कि भगवान चक्र पहिया लेके भीष्मदेव को मारने के लिए जा रहे हैं, लेकिन और अर्जुन पकड़ रहे हैं उनको ऐसा लगता है, लेकिन प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि नहीं, ऐसा तो सही है, गलत नहीं है, लेकिन साथ में एक इसका हमारे आचार्यों ने रस शास्त्र की दृष्टि से क्या चर्चा किया है, जिस प्रकार से एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की ओर दौड़ता है उसी प्रकार से भगवान प्रेम के कारण भीष्मदेव की ओर दौड़ रहे थे, और अर्जुन के रोकने में भी रोकने जा रहे थे, है ना। तो वो दिव्य है, लेकिन वो ऐसी भगवान लीलाएं करते हैं तो लोग बहुत बिबिल्डर हो जाते हैं। इसीलिए जो है हमें इस श्लोक से एक ही समझना चाहिए, वी कांट बिकम गॉड बट वी कैन बिकम गॉडली, वी कैन बिकम गॉड बट वी कैन बिकम गॉडली, एंड वी अवर गोल इज टू बिकम गॉडली, वी आर ऑलरेडी गॉडली, हम भगवान के ही अंश हैं, यू नो वी आर बिलोंग टू गॉड, वी आर गॉड्स। और श्रवण कीर्तन के माध्यम से, भगवान की इस भक्ति के माध्यम से, भगवान के इन दिव्य कार्यकलापों को हम समझ सकने का प्रयास कर सकते हैं। समझ तो नहीं सकते, वो तो जिस प्रकार से सूर्य अपने आप भी प्रकट होता है, तो भगवान जितने जिस मात्रा में अपने आप को रिवील करते हैं उसी मात्रा में कोई भक्त उनको समझ सकता है। लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं किस तरीके से, केवल भक्ति के माध्यम से। तो ऐसे अन्य लीलाओं को, तो ये तीन डिफरेंस हमें बताया कि भगवान असीमित हैं और जीव सीमित हैं, और भगवान का शरीर जो है और भगवान के देह और भगवान में कोई अंतर नहीं है, जीवात्मा के शरीर और आत्मा उसमें अंतर है, और भगवान सृष्टि करता है और सृजन करते हैं, और जो जीवात्मा है वैसे उनका सृजन नहीं होता, वो शरीरों का सृजन होता है और विनाश होता है। तो ये तीन मुख्य पॉइंट इसके अंदर प्रभुपाद तात्पर्य के अंदर बताए, और हमने एक एग्जाम्पल चर्चा किया शूकर और भगवान वराह का और एक ऑर्डिनरी सुअर का, कि कभी भी एक साधारण जीव भगवान के समान नहीं बन सकता, ये कल्पना सोचना चाहिए, ना हमें भगवान बनने की इच्छा करनी चाहिए, लेकिन भगवान के शाश्वत सेवक बनके हम भगवान के साथ रह सकते हैं, और भगवान की भक्ति करके भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन करके जो है, और उनके मिशन में पार्टिसिपेट करके जो है, हम सब भगवद्धाम वापिस जा सकते हैं। वी कैन पार्टिसिपेट इन गॉड्स पास टाइम इन डिफरेंट मनोअंतर्स। जय श्री ग्रंथराज भागवतम की। तो के लिए अगर समय तो 2-3 मिनट ऊपर हो गया, किसी अगर टिप्पणी या कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। वैसे आई डोंट थिंक एनी क्वेश्चन विल बी देयर, तो इज मोर इन्फॉर्मेशन। यस प्रभु जी, वो वरहा दास भगवान वरहा के दास। अच्छा, श्री रूपा की जनता गौर पे बंदे।